ये आकाशवाणी है। अब आप रत्ना पांडे से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वियना में ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमा के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। बैठक में व्यापार और निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप और सांस्कृतिक सहयोग तथा आपसी संबंधों के बारे में बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। बैठक के बाद श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद सहित मानवता के सामने मौजूद सबसे बड़ी चुनौतियों पर चर्चा की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को प्रभावी बनाने के लिए उनमें सुधार की आवश्यकता पर भी बल दिया। ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमा ने कहा कि बुनियादी ढांचा, समाज में डिजिटलीकरण और तेज गति से बुनियादी ढांचे का विकास भारत की सफलता को प्रदर्शित करता है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमा ने आज हाफबर्ग में पैलेस में दोनों देशों की शीर्ष कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को संयुक्त रूप से संबोधित किया। श्री मोदी ने बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित क्षेत्र, नई और उभरती प्रौद्योगिकी, फिनटेक, स्टार्टअप और नवाचार सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की कंपनियों के बीच सहयोग पर जोर दिया। उन्होंने ऑस्ट्रिया की कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में प्रख्यात अर्थशास्त्रियों के साथ संवाद करेंगे। बैठक में अर्थशास्त्रियों, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और अन्य सदस्य भाग लेंगे। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 23 जुलाई को लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करेंगी। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने देश में डेंगू का प्रसार रोकने की तैयारियों का आकलन करने के लिए आज नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने कहा कि मंत्रालय डेंगू की रोकथाम और प्रबंधन के लिए योजनाएं तैयार कर रहा है और राज्यों के साथ मिलकर काम भी कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मंत्रालय 2400 घंटे डेंगू हेल्पलाइन शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि राज्यों से अगले 4-5 दिन में डेंगू हेल्पलाइन शुरू करने को कहा गया है। उत्पादन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दूरसंचार उपकरण विनिर्माण की बिक्री 50,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। संचार मंत्रालय के अनुसार इस योजना के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों में 3,400 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ, जिससे 10,500 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ। इस योजना से 17,800 से अधिक प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार सृजित हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत एक मुस्लिम महिला को अपने पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। न्यायाधीश बीवी नागरत्ना और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की एक पीठ ने इस मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति ने धारा 125 सी आरपीसी के अंतर्गत अपनी तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता देने संबंधी निर्देश के विरूद्व याचिका दायर की थी। पीठ ने यह भी आदेश दिया कि आवेदन लंबित रहने के दौरान अगर महिला को तलाक दिया जाता है तो वो विवाह अधिकार संरक्षण संबंधी 2019 के अधिनियम का सहारा ले सकती है। उत्तराखंड में चमोली जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पाताल गंगा लंगसी सुरंग के पास भारी भूस्खलन के बाद यातायात अवरूद्ध हो गया है। इससे बद्रीनाथ यात्रा आज दूसरे दिन भी बाधित है। बद्रीनाथ यात्रा पर जाने वाले सभी तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रुकने के लिए कहा गया है। पैरा खेलों में भारतीय निशानेबाज रूबीना फ्रांसिस और स्वरूप उन्हालकर ने आज वाइल्ड कार्ड के अंतर्गत पेरिस पैरालंपिक का कोटा हासिल कर लिया है। इससे इन खेलों में पैरा निशानेबाजों की संख्या 10 हो गई है। पिछले साल हांगचो एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता और विश्व रैंकिंग में दूसरे नंबर की रूबीना और स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में निरंतर बेहतर प्रदर्शन करते रहे हैं। भारत ने आज हरारे में तीसरे 2020 क्रिकेट मैच में जिम्बाब्वे को 23 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 182 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 159 रन ही बना सकी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।